हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 1 और 2। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम ओमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व जाने करारिविंदे न पदारिविंदम् मुखारिविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि मस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवीति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 12, जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। जब वेदुर जी ने मैत्रेय मुनि से सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न किया, तो मैत्रेय मुनि प्रारंभ से बताना शुरू किया और उसके बाद आज मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, मैंने आपको भगवान के काल स्वरूप के विषय में भी बताया, अब आप हमसे जो सारा वैदिक ज्ञान है, उनके जो आगार ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने किस तरह से ये सृष्टि की थी, मतलब सर्ग के बाद विसर्ग कैसे हुआ, और जब भगवान ने पूरी संसार की सृष्टि कर ली उसके बाद प्रलय हो गया, तो फिर दोबारा से जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की वो कैसे हुई है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे ध्यान से सुनिए। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णित क्षत्ता कालाक्ष परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथास्तत्राक्षिन्निबोध मे इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाक्षयः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथास्त्राक्षिन्निबोध मे। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा इति ते वर्णिता क्षत्तः, इति ते माने इस प्रकार, ते माने आपसे, वर्णिता मतलब मैंने वर्णन किया, क्षत्तः विदुर जी का नाम है, विदुर जी को कहते हैं क्षत्तः, मैंने आपको बताया क्या, कालाक्षयः, कालाक्षयः का मतलब होता है नित्य काल नामक, परमात्मना यानी परमात्मा की, जो नित्य काल स्वरूप में जो परमात्मा विद्यमान है उसके विषय में आपको बताया। अभी महिमा वेद गर्भोथ, महिमा मतलब ख्याति, वेद गर्भो अर्थात वेदों के आगार, वेद गर्भ ब्रह्मा जी को कहते हैं, जिनको पूरे वेदों का ज्ञान है, या जो भगवान समस्त वेदों को प्रकट करने वाले हैं उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले, वेद गर्भो थ। इसके बाद यथास्त्राक्षी निबोध में, यथा माना जिस तरह से, अस्त्राक्षी मतलब उत्पन्न किया, यानी ब्रह्मा जी ने किस तरह से उत्पन्न किया, वो निबोध में, निबोध यानी वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप समझने का प्रयास करो, मैं यानी मेरे द्वारा। अनुवाद, श्री मैत्रेय ने कहा हे विदुर, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की काल रूप की महिमा का की ख्याति की है, अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आकार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। अभी तक ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मांड में उत्पन्न होने के बाद, जब गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उसके बाद जब वो इतना समय तक तपस्या करते हैं और उनको आदेश मिलता है कि आपको सृष्टि की सृजन करना है, तो वो सबसे पहले क्या उत्पन्न करते हैं उसके विषय में बताते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं ससर्जाग्रेन्धत् तामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहम् च मोहम् च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। अभी क्या क्या उन्होंने बनाया है, एक बार फिर से श्लोक को देखिए। ससर्जाग्रेन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमाद्रिकिता ससर्जाग्रिन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादृकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ससर्जाग्रे, ससर्ज मतलब उत्पन्न किया, अग्रे मतलब सबसे पहले, सृष्टि की सृजन से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, अंध तामस्रम मतलब मृत्यु का भाव, कि इस संसार में जीवों की उत्पत्ति से पहले ही अंध तामस्रम अर्थात मृत्यु का भाव, कि जो भी यहां पर आएगा उसको मरना होगा, सबसे पहले ये भाव का अंध तामस्रम। और अथ यानी उसके बाद, तामिश्रम यानी हताश पर क्रोध। एक तो यहां पर जो आएगा उसको मृत्यु का भय रहेगा, और दूसरा जो उसकी इच्छाएं होंगी वो कभी पूरी नहीं होंगी, जिसके कारण उसको क्रोध आएगा, है ना। जीव की हम देखते हैं, हर एक जीव की इच्छाएं अधूरी रहती हैं। उसका कारण ये कि इच्छाएं अनलिमिटेड है। अभी अनलिमिटेड इच्छाओं में से हजार में से अगर 900 ना इच्छाएं पूरी हो भी जाएंगी तो भी तो उसमें से 100 इच्छाएं ऐसी होंगी तो नहीं पूरी होंगी, तो फिर वो क्या है, तामिश्रम अर्थात क्रोध का भाव। आदिकृता, आदिकृता मतलब ये सभी, महामोहम यानी भोग्य वस्तुओं का सामित्व, और मोह उत्पन्न किया, महामोह मतलब जो कुछ आपके पास संसार में है ना वो मेरा है, आपको लगता है अपने, हालांकि देखा जाए तो संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा से रिलेटेड कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। ये शरीर जो है ना वो हमारा नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो कुछ समय के लिए आपको रहने के लिए जगह दी, मानो आप मार्केट किधर दूसरे कंट्री में जाओ और वहां पर आपको एक घर रहने के लिए, रूम लेने के लिए किसी होटल में दे दिया जाए, तो वो आपका तो नहीं हुआ ना, वो तो कुछ समय के लिए आपको दिया गया है। उसी तरह से ये शरीर भी हमको थोड़े समय के लिए दिया गया, लेकिन महामोह, मोह क्या है, हम हर एक वस्तु को इस शरीर से रिलेटेड जानते हैं और समझते हैं कि ये हमारी भोग्य है। हालांकि हम तो शरीर नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या उत्पन्न किया, अंधतामिश्रम यानी मृत्यु का भाव, कि जो भी आएगा उसको मरना पड़ेगा। उसके बाद तामिश्रम यानी हताश पर क्रोध, और उसके बाद महामोहम कि हर एक वस्तु जो तुम्हारे पास है उसको भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व, ये मेरी है, ये मेरी है, मेरा का भाव। च मोहम, मोह मतलब भ्रांत धारणा, जैसे मोह मतलब भ्रांत धारणा। भ्रांत धारणा क्या है, कि मैं ये शरीर हूं, बस मोह सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने आप को ये शरीर समझ के बैठा हूं। इस संसार में कितना भी जीव को बताओ, जितने भी लोग हैं उनको जितना भी बताओ कि भई आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपको आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, फिर भी घर जाएंगे, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कैसे जागना, कल क्या होगा, ये सब, ये कितना भी ज्ञान दी जाए, लेकिन ये संसार के अंदर इतना मोह भर दिया है ना ब्रह्मा जी ने, जिसके कारण हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते। और ये मोह है कि अपने शरीर, अपने आप को शरीर मानते हैं, और उससे बड़ा मोह क्या है, महामोह क्या है, कि हर एक वस्तु को अपना भोग्य मानते हैं, महामोह। च मना भी तमह यानी आत्मज्ञान में अंधकार। एक तो अपने आप को शरीर मान लेते हैं और आत्मा के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। असतेरा का सत्य करीमान, असत्य जो है उसको सत्य मानते हैं, और जो सत्य है
आत्मा के बारे में तो कभी नहीं सोचते कि आत्मा भी, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के लिए कुछ। इवन अगर देखा जाए थोड़ा सा भी ध्यान से, तो हम जो भक्ति भी कर रहे होते हैं ना, तो भी उसकी बदले में भी चाह रहे होते हैं कि इस संसार में सुखी रहे, है ना। भगवान की भक्ति करें तो जीवन में कष्ट नहीं आए, भगवान की कृपा प्राप्त हो, और मरने के बाद भगवत प्राप्ति हो, वो अलग। लेकिन आत्मा का कल्याण, कि इससे ही मुझे आत्मा को तृप्ति मिल रही है कि मैं श्रवण कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, वो तो सोच में भी नहीं आता। इसको कहते हैं तमह, यानी आत्मज्ञान में अंधकार, जो अज्ञान। अज्ञान मतलब अविद्या, अविद्या मतलब कि भगवान के साथ संबंध भूल जाना, सबसे बड़ी अविद्या यही है। और इस संसार में हम देखें, जिसको हम विद्या कहकर बुलाते हैं, एजुकेशन कहकर बुलाते हैं, वास्तव में सबसे बड़ी अविद्या वही है। जितना जितना हम भौतिक एजुकेशन की प्रति आगे बढ़ते हैं, उतना उतना हम भगवान से दूर होते जाते हैं, है ना। जितना जितना आज हम देखते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनको लगता है कि भगवान से कुछ लेना देना है ही नहीं। मतलब केवल एजुकेशन प्राप्त करना, अपने जीवन को और भी, लाइफस्टाइल को और भी एडवांस बनाना, धन अर्जित करना, पढ़ना लिखना, मतलब बस यही जीवन का एक लक्ष्य। उनको याद भी नहीं रहता है कि कल तो मर जाएंगे, और मरेंगे तो भगवत धाम जाने के लिए कुछ तो करें, और मरने के बाद आज मैं इतना एजुकेशन प्राप्त किया हूं, भगवत भक्ति नहीं करा, कल तो अगर मुझे कुत्ता बना के भेज दिया गया तो क्या लाभ होगा इस पढ़ाई का, क्या लाभ होगा इस एडवांस लाइफ का, है ना। लेकिन ये अविद्या है जो हमें भगवान से दूर कर देती है, और ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई वस्तु है। कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और हम इनमें इतना आनंदित हैं। अज्ञान वृत्तयः, अर्थात पेशे या वृत्तियां, इस संसार में अविद्या के अलग अलग पेशे हैं, मतलब अलग अलग तरीकों से जीव को भगवान से दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखा जाए तो आज जितना जितना साइंस एडवांस होती जा रही है, वो सब वस्तुएं वास्तव में हमको अविद्या में घेरने के लिए हैं, वास्तव में जीव को भगवान से दूर करने के लिए ही तो हैं। जैसे पहले जमाने में टीवी नहीं होता था, एलईडी नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो भगवान से जुड़े होते थे, लोगों के पास समय होता था कि वो भगवान के साथ समय बिताते थे। घर में पेरेंट्स जो बड़े हैं वो बताते कि आज सत्यनारायण है, आज एकादशी है, इस तरह से भगवान की सेवा करो। सुबह सवेरे उठते थे सब लोग, और सबको पता था कि हमको सूर्य उदय होने से पहले उठना है, और स्नान करके सबसे पहले मंदिर में जाते थे, प्रणाम करते थे, गीता और भागवतम पढ़ते थे। आज किसी के पास समय है नहीं, रात को 3-3 बजे तक सब लोग मोबाइल पे और टीवी में, एलईडी में बैठे हुए होते हैं, और उसके बाद सुबह को जैसे इनके जाने का टाइम होता है ना ऑफिस के, उस समय तक तो उनकी नींद टूटती है। जल्दी जल्दी उठ के हाथ में नाश्ता पकड़ के रोड पे चलते हुए कुत्तों की तरह खा के फिर बस ऐसे जी रहे हैं, और उनको लग रहा है कि शायद हम लोग एडवांस हो गए हैं। तो इसको वृत्तय कहते हैं कि अज्ञान वृत्ति, बहुत सारी अज्ञान की वृत्तियां हैं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तो हमको लग सकता है कि
ये इतना बड़ा अत्याचार जीव के संसार में आने से पहले क्यों हो गया, है ना? क्यों हमारे लिए इतना गहरा खाई खोदा गया है कि पहले हम आए नहीं और इस संसार में ये हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का अभाव, मोहमयी शारीरिक धारणा, अपने आप को जीव शरीर समझते समझते नहीं थकता और बस वही चीज में आनंद ढूंढता है जिससे ये शरीर सुखी हो जाए। बस क्या खिला के इस शरीर को सुखी करूं, कैसी जगह हो कि वो वहां पर रहकर आनंदित हो, कैसा रूम हो, कैसा घर हो, कैसी गाड़ी हो, कैसा वस्त्र हो, कैसा खान पान हो। बस ये मोह इतना गहरा है संसार में कि हमें उससे उभरने नहीं देता। हम भक्त भी बन जाते ना, हम फिर भी ये मोह इतना गहरा है ना कि कहीं जाएंगे अगर अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगी फिर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ या बैठने की जगह नहीं। कहीं अगर घूमने भी जाएं, होटल में जाएं तो फिर ऐसा हो कि रात को अगर हमें अच्छी रूम नहीं मिलेंगे तो फिर हमको लगेगा ना कि कितना गलत जगह पे आ गए हम लोग। कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि खाने के लिए कुछ है नहीं, ये भी कोई जगह है। तो ये सब वास्तव में मोह ही तो है। और भक्त तो छोड़ो, ये संसार का मोह ऐसा है कि साक्षात इंद्र भी यदि कभी आ जाए, आप सबने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी, इंद्र को शाप मिल गया सुअर बनने का और सुअर के शरीर में वो इतना आनंदित था कि जब नारद मुनि साक्षात उनको लेने के लिए आए कि अब चलो तुम्हारा शाप का समय समाप्त हो गया है तो तुम चलो अपने स्वर्ग के आसन पे बैठो, तब वो कह रहे थे कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ मुझे बहुत आनंद आता है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ पर कितना अच्छा विष्ठा खाने को मिलती है, मैं स्वर्ग में नहीं। मतलब इस संसार के तुच्छ से, ये संसार इतना तुच्छ है, इतना घृणित है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि आप इस संसार में आए हो तो ऐसे रहो जैसे आप टॉयलेट में जाते हो ना और विष्ठा जब करने के लिए मजबूरन आपको जाना पड़ता है तो जाने के बाद कभी उधर मुंह करके देखते नहीं हो, फौरन से फ्लश करके आ जाते हो ना, उसी तरह से ये संसार इतना घृणित है, इतना गंदा है कि वो देखने के योग्य नहीं है। इतना ही जियो कि बस मजबूरन आ गए हैं और अपने कर्म जो हमने किए हुए हैं उनको भुगतने के लिए आना पड़ गया, लेकिन किसी भी चीज में आसक्ति रखनी ही नहीं है क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रेम करने के योग्य हो, जो हृदय में रखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो। कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में केवल दुख ही दुख है, लेकिन ये मोह इतना गहरा है कि जितना भी सुन लो ना, वरना आपने क्या कम सुना है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद कितना गहराई से सुना, दूसरा स्कंद, उसके बाद अब तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, गीता के प्रत्येक श्लोक को श्रवण किया, लेकिन अभी तक मोह तो समाप्त नहीं हुआ है ना, आसक्ति तो संसार में है ही है ना। तो अब ये प्रश्न उठेगा जरूर कि क्यों किया गया ऐसा हमारे साथ, क्यों, तो इसका कारण क्या है, क्यों ये सब चीजें बनाई गई, वो शिला प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से समझाएंगे कि हम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के योनियों में जीवों को वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीव को इस भौतिक जगत में रहना होता है। अब देखो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवों को उत्पन्न करने से पहले, जीवों की योनियां उत्पन्न करने से पहले परिस्थितियां बनाना ज्यादा जरूरी है।
جس میں ان کو آ کے رہنا ہے. اور آگے شری پربھوپاد جی کہتے ہیں, جب تک جیو اپنے اصلی سوروپ کو بھول نہیں جاتا تب تک جیو کی بھوتک اوستھاؤں میں رہ پانا اس کے لیے اسمبھو ہے. جب تک جیو اپنے اصلی سوروپ کو بھول نہیں جاتا, ہم جو جیو ہے نا, ہم نے یہ اچھا کی ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے یہ اچھا کی ہے کہ ہمیں سوامیتو کرنا ہے, ہمیں آنند لینا ہے, ہمیں بھگوان کو پرسن نہیں کرنا ہے, خود کی پرسنتا کی اچھا جو جب دل میں آ جاتی ہے نا کہ مجھے پرسن ہونا ہے, تو یہ کیا ہے. یہاں شیلا پربھوپاد جی کہتے ہیں اصلی واستوک سوروپ کو بھولنا. جیو کا واستوک سوروپ کیا ہے؟ جیور سوروپ ہوئے کرشن یا نتیہ داس. واستوک سوروپ تو یہی ہے جب جیو کرشن کی داست تک کے اترکت کچھ اور چاہتا ہے. اور جب تک ہردے کے اندر وہ بھاؤ ہوگا تب تک ہم بھگوان کو بھگوان کے دھام میں جانے کے یوگیہ ہی نہیں ہے. جب تک جیو کے ہردے میں یہ بھاؤ ہے نا, مجھے بھی آنندت ہونا ہے, مجھے بھی پرسن ہونا ہے, مجھے بھی بھوکتا بننا ہے, تب تک ہم بھگوان کے دھام میں نہیں جا سکتے. لیکن جب یہاں شیلا پربھوپاد جی کہتے جب تک جیو اپنے اصلی سوروپ کو بھول نہیں جاتا تب تک جیون کی بھوتک اوستھاؤں میں رہ پانا اس کے لیے اسمبھو ہے. لیکن یہ بات کو پوری طرح سے اسے بھولنا پڑے گا کہ میں آتما ہوں, میں بھگوان کا انش ہوں اور میں بھگوان کا داس ہوں. یہ بات جب پوری طرح سے بھول جائے گا نا تبھی اس بھوتک اوستھا میں وہ رہ پائے گا. ورنہ جو بھگوان کے بھکت ہوتے ہیں نا, ان کے لیے سنسار میں رہنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے. ان کے لیے, ان کو تو بس کرشن سے پریم اتنا ہوتا ہے کہ وہ کرشن کے لیے ہی جیتے ہیں. اور جو بھکت نہیں ہوتے ان کو بھگوان کے دھام کی بھی اچھا نہیں ہوتی. وہ سنسار میں بھی, ان کو بولو چلو بھگوان کے دھام میں, کوئی نہیں چلے گا. وہ سب چاہیں گے کہ ہم کو یہیں پر آنندت ہونا ہے. تو یہ بات, یہ شلوک بہت مہتوپورن ہے. شری پربھوپاد جی نے کہا جب تک جیو اپنے اصلی سوروپ کو بھول نہیں جاتا تب تک جیون کی بھوتک اوستھاؤں میں رہ پانا اس کے لیے اسمبھو ہے. اتے بھوتک جیون کی پہلی دشا ہے اپنے اصلی سوروپ کی وسمرتی. اپنے اصلی سوروپ کو بھولنے پر منشیہ کا مرتیو سے بھیبھیت ہونا نشچت ہے. اب دیکھو, سب سے پہلی بات اصلی سوروپ کی وسمرتی, وہ ہے اویدھیا, اس سنسار کا موہ. ہم اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کون ہیں. اور اسی لیے یہ کیوں بنایا گیا, ایک پلیٹ فارم بنایا گیا, کیونکہ ہم کو بھوتک جگت میں رہنے کے لیے اپنے واستوک سوروپ کو بھولنا ہی پڑے گا. اور اگر ہمارے اندر جو بھگوان کے دھام میں ہوتے نا جیو, ان کے اندر ایک کن کا بھی آنند پراپت کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے. جب تک جیو کے ہردے میں ایک کن کی بھی آنند پراپت کرنے کی اچھا ہوگی نا, تو وہ بھوتک جگت میں ہی رہے گا. اس کو آدھیاتمک جگت میں رہ کر جاننے کی پرمیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ہم بھگوان کی تٹستھ شکتی ہے نا. تو شروع سے ہی ہمارے اوپر ایک آورن تھا اس بات کا کہ ہمیں آنند لینا. باقی تو 75% جتنے بھی جیو آتما تھی وہ آدھیاتمک جگت میں جیو کو یہ دور دور تک اچھا ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم بھی آنندت ہوں. وہ آنند کیسے پراپت کرنا چاہتے ہیں, میں کیسے کرشن کو خوش کروں, میں کیسے کرشن کو خوش کروں, میں کیسے کرشن کو خوش کروں, وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر جب بھکتی بھی کرتے ہیں, سیوا بھی کرتے, پھر بھی اس میں ہم اپنا آنند ڈھونڈتے ہیں نا, تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے ایسے لوگوں کو, ایسے جیووں کے رہنے کے لیے جو کہ بھوتک جگت میں آنند پراپت کرنے کی اچھا رکھتے ہیں. اب دیکھو, آنند پراپت کرنے کی اچھا کے لیے پہلے اس کو اپنے سوروپ کو بھولنا پڑے گا. جیور سوروپ ہے کرشن نتیہ داس, وہ بھول جائے گا. اور پھر وہ کس پہ آئے گا کہ میں شریر ہوں, مجھے اس سنسار میں آنند بھوکنا ہے. تو ایسا پلیٹ فارم بنانے کے لیے برہما جی یہ سب کرتے ہیں. جیسے جیسے میں آپ کو ایک سیمپل دوں, ایک ہاسپٹل ہوتا ہے نا, جب جیسے اگر کوئی مریض ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کو بہت بڑی بیماری ہو جائے کینسر کی, تو ایسے ہی کسی فرش پہ لا کر اس کو نہیں ٹریٹ کیا جائے گا, ہے نا. اس کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جانا پڑے گا, ایک ایسی ہاسپٹل میں جہاں پر پہلے سے ہی ساری ویوستھا ہونی چاہیے. وہاں پر آئی سی یو کا روم ہونا چاہیے, وینٹیلیٹر ہونا چاہیے, ڈاکٹرز ہونی چاہیے, نرس ہونے چاہیے, سرجری کے سارے جتنے استر شستر ہیں وہ سب ہونے چاہیے, تبھی تو وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اسی طرح سے سنسار میں جیو جب آنند بھوگنے کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر اندھ تامسر ہونا پڑے گا کہ سب کچھ جو اصلی اس کا سوروپ ہے اس کو بھولنا پڑے گا اس کو. اس لیے شلا پربھوپاد جی کہتے ہیں کہ اتیو جیو بھوتک جیون کی پہلی دشا ہے اپنے اصلی سوروپ کی وسمرتی. اپنے اصلی سوروپ کو بھولنے پر منشیہ کی مرتیو سے بھائبیت ہونا نشچت ہے نا. پھر تو ظاہر سی بات ہے, ہم آپ اپنے آپ کو شریر سمجھیں گے. تو اس سنسار میں جتنے بھی بڑے بڑے شکتیشالی لوگ ہیں ان کو مرتیو کا تو بھائی ہوتا ہے, بھلے بھگوان کو مانے یا نہ مانے ان کو یہ بات کا تو ہمیشہ بھائی رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہی ہے. آگے یدیپی شدھ آتما مرتیو رہت تتھا جنم رہت ہوتا ہے, بھوتک پرکرتی کے ساتھ یہ جھوٹی پہچان ان وستوؤں کے مِتھیا سامتو کے کارن ہے جو شریشٹھ نینترن کی ویوستھا دوارا پردت ہوتی ہے. آتما اگر اپنے آپ کو سمجھیں گے تو آتما کے لیے بھگوان کہتے ہیں نہ جایتے مریتے وا کدا چنائم بھوتوا بھویتا وا نبھویا اجو نتیا شاشوتو یم پوراڑو نہ ہنیتے ہنیمانے شریرے. شدھ آتما مرتیو اور جنم کے پرے ہے لیکن بھوتک پرکرتی کے ساتھ یہ جھوٹی پہچان کہ میں یہ شریر ہوں ان وستوؤں کے متھیا سوامتو کے کارن ہے اور جو شریشٹھ نینترن کی ویوستھا دوارا پردت ہے. یہ سب شریشٹھ نینترن جو بھگوان ہے برہما جی ان کے کارن یہ سب ہو رہا ہے. جیو کو سمست بھوتک سنستھاد اس لیے پردان کیے جاتے ہیں کہ وہ شانتی پوروک رہ سکے اور بدھ جیون میں آتم ساکشاتکار کے کرتویوں کو نبھا سکے. یہ سب کیوں بتا دیا گیا ہے کہ اس سنسار میں شانتی پوروک رہ سکے اور بدھ جیون بدھ جیو میں پنہ اسے پریاس کرنا پڑے گا آتم ساکشاتکار کے کرتویوں کو نبھانے کا. جب اسے خود سے یہ ریئلائز ہوگا, پریاس کرے گا, بہت ٹھوکریں کھائے گا اور پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کرشن کا داس ہوں, سنسار میں کتنا پریاس کیا مجھے آنند نہیں آیا, ان سنسار کی وستوؤں سے آنند نہیں آئے گا, مجھے بھگوان کو پرسن کر کے آنند. تو یہ آتما ساکشاتکار کے کرتویہ ہیں اپنے آپ کو پیور کرنے کے لیے. شیلا پربھوپاد جی کہتے ہیں کنتو جھوٹی پہچان کے کارن بدھ جیو بھگوان کی سمپتی کے جھوٹے سوامتو کے ابھاؤ میں بندھک ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس سنسار کی وستوؤں سے آنندت ہونے کی کا پریاس کرتا رہتا ہے جھوٹی پہچان کے کارن, کیونکہ شریر سمجھتا ہے. تو یہ سب بھگوان کی سمپتی ہے اور اس پر اپنے سامتو کو جتانا چاہتا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا شریر ہے اور یہ سب سمبندھی میرے شریر کے ہیں, یہ سب وستوئیں میرے شریر کے لیے ہیں, یہ سب دھن میرے شریر کے لیے ہیں, یہ سب سمپتی میرے شریر کی ہے. تو اسی کا ہی وہ بندھک بن جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, یہ سنسار پ ورگ ہے, پریشرم کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے پ سے, اس کے بعد اتنا پریشرم کرتا ہے کہ پھیڑ نکل آتی ہے مکھ سے اور پھر وہی وستوئیں جو پراپت کرتا ہے ان کے بندھن میں بندھ جاتا ہے اور سدیو بھیبیت رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ چھن نہ جائے. اور ایسا پریشرم اور ایسے وستوؤں کے پراپتی کے لیے جو
इस संसार में मोह के कारण परिश्रम करता है, फिर निकल आती है, फिर बंधन में बंध आता है और सदैव भयभीत रहते रहते कि कहीं मुझसे छिन न जाए, एक दिन मृत्यु आ जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है और भौतिक जगत की पांच प्रकार की अविद्याएं जो जीव को बद्ध बनाता है वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने पांच अविद्याएं जो इस श्लोक में बताई गई है ना, अंधतामिश्र, तामिश्र, मोह, महामोह और अविद्या, इनके विषय में ये सब कहाँ से आई है, भौतिक जगत की पांच प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है, ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यपद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। आप देखो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बद्ध जीव है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि, ये जो संसार है वो ब्रह्मा जी की एक जादुई छड़ी है, उसके वश में है ना। मोह के कारण अपने आप को शरीर समझता है, अंध तामस्र में घिरा हुआ है, अविद्या में घिरा हुआ है, अपने आप अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है और बस इसी यहीं पर आनंदित होना चाहता है। तो ब्रह्मा जी की जादुई छड़ी के वश में है, भला वो भगवान कैसे हो सकता है, है ना। तो ये भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सोचना नितांत हास्यपद मतलब मजाक की बात है कि वो जो भगवान की बनाई हुई एक जीव ब्रह्मा जी की जादुई छड़ी को भी पार नहीं कर सकता, वो भला भगवान कैसे हो सकता है। और श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, पतंजलि भी यह स्वीकार करती है कि अविद्या पांच प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो ये पांच प्रकार की अविद्या है, कौन सी है, ससर जागृंध तामिश्र, सबसे पहले अंध तामिश्र यानी मृत्यु का भय, मृत्यु का अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपनी रियलिटी को मृत्यु का भय होता है। और तामिश्रम यानी हताश से क्रोध, इच्छाएं पूरी ना होने के बाद क्रोध होता है। और महामोह कि हर एक वस्तु को अपनी भोग्य समझना, उस पे स्वामित्व रखना, ये मेरी है। और मोह क्या है, असत्येर सत्य करे मान, मोह ये है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। और तमह यानी आत्मज्ञान में अंधकार, मतलब असल में जो हम हैं वो भूल जाते हैं। और अज्ञान यानी अविद्या, अविद्या का मतलब है कि जो ये जो भौतिक जगत है उसके रंगीनी में खोकर हम भगवान से दूर हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी अविद्या है। तो बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, लेकिन इस सब को समझने के बाद काम एक ही करना है कि किस तरह से हम इस माया से पार हो सके। ये माया ही तो है, ये भगवान की रची हुई माया है। और भगवान कहते हैं, दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है ना, इसको तुम अपनी शक्ति से कभी पार नहीं कर पाओगे, ये बहुत कठिन है इसको पार करना, दुरत्यया बहुत कठिन है। मगर माम एव यो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, जो मेरी शरण में आ जाएगा, अगर तुम मेरी शरण में एक बार आ जाओगे तो मैं स्वयं आपको अपनी गोद में उठाकर इस माया से पार कर लूंगा। ये भक्ति का रास्ता इतना सुगम है, ये भक्ति जो है वो इस मोहमयी माया के जो इतना बड़ा भवसागर है ना, उसको एक छोटे से जो गौवत्स होता है ना उसके खुर के समाये हुए पानी के जितना बना देती है। इसलिए भक्ति का जो रास्ता होता है ना, वो भक्ति एक नाव है,
لیکن جیسے آپ اس ناؤ میں بیٹھتے ہو نا تو اس پار کرنے کے لیے ناؤ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیسے بتا رہی ہوں میں کہ بھکتی کو اس پار لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھاو ساگر پار کرا کے اس پار, تو کیول آپ کی بھکتی بھاونا کی اچھا جو آپ کے ہردے کے اندر جو تڑپ ہے نا کہ مجھے کرشن کی بھکتی کرنی ہے, وہ تڑپ ہی اس بھاو ساگر کو گوکھر میں سمائے ہوئے جل کے برابر کر دیتی ہے. پھر بھکتی کی ناؤ تو اس تٹ پہ ہی رہ جاتی ہے اور آپ سویم سے پار کر لیتے ہو. پھر تو اس جگت کو پار کرنے کے لیے بھکتی کی ناؤ کو ادھر لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنے چھوٹے سے سمندر کو تو آپ پھلنگ کے پار کر دیتے ہو. پھر بھکتی اسی سنسار میں جتنے بھی بڑے بڑے سادھو مہاتما بھکت گزرے ہیں وہ بھکتی کی ناؤ میں بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو یہ سنسار ساگر تو چھوٹا سا بن جاتا ہے گوکھر کے جتنا. پھر ناؤ کو یہیں اسی کنارے پر ہم جیسے پتت جیووں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اب آپ لوگ ٹرائی کرنا آنے کی. تو یہ بہت سرل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھگوان کے شدھ ویشنو بھکتوں کا سنگ کریں جو ہمیں بھکتی کی ناؤ کے وشے میں بتائیں, جو ہمیں اس بھاؤ ساگر کو چھوٹا کرنے کا گوکھر میں سمائے ہوئے جل کے برابر بنانے کا طریقہ ہم خود سے نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیول کھورے گیان سے ہم آدھیاتمک استھتی پر نہیں پہنچ سکتے. ہم کو شدھ ویشنو بھکتوں کے سنگ کی بہت آوشکتا ہے, تبھی ہم اپنے ان سمست جو پانچ پرکار کی اویدھیائیں ہیں, پانچ پرکار کے جو موہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر بھگوت دھام میں لے کر جانے کے یوگیا بنیں گے جب ہمیں شدھ ویشنو کی شدھ بھکتوں کی سیوا کرنے کا اوسر ملے گا. آپ سب کا بہت بہت دھنیواد, کرپیا ساتھ رہیے گا. میرے لیے پرارتھنا کرنا مت بھولیے گا کہ میں اپنی سیوا اور سادھنا کو اچھے سے کر سکوں. ہرے کرشن.